नमस्कार भारत, तारीख 30 नवंबर दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। ब्राजील के खिलाड़ियों की हवाई दुर्घटना में दर्दनाक मौत के बाद पूरा फुटबॉल जगत उनके गम में हुआ शरीक।
Foi muito triste receber essa notícia e saber que aqui em Chapecó, na nossa cidade de 220 mil habitantes,
भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र और गुजरात के निकाय चुनावों में मिली जीत को नोटबंदी के पक्ष में जनता की राय बताई। कांग्रेस बोली,
उसका वोट परसेंटेज कम हुआ है। पिछली बार वो 42% था, जो घट करके सिर्फ 20% रह गया है। बीजेपी को मोनेटाइजेशन का नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है।
नोटबंदी के चलते दिहाड़ी मजदूर को काम नहीं मिला तो पैसे के लिए कराई नसबंदी। कार्यक्रम में अखबारों की समीक्षा भी होगी, साथ ही और खबरें भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमर शर्मा से। ब्राजील की एक फुटबॉल क्लब चापेकोंसे रियल फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों की दर्दनाक मौत के बाद पूरी दुनिया के फुटबॉल जगत में शोक छा गया है। 77 लोगों को ले जा रहा है एक चार्टर्ड विमान कोलंबिया के मेडलिन शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में सिर्फ 6 लोग जिंदा बच पाए और 71 लोगों की मौत हो गई। बार्सिलोना के लियोन मेसी और नेमार, मैनचेस्टर यूनाइटेड के वेन रूनी जैसे कई नामी फुटबॉल खिलाड़ियों ने क्लब के खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि दी है। जम्मू के नगरोटा में कल चरमपंथियों ने सेना के एक शिविर पर हमला किया और उसके बाद चले ऑपरेशन में भारतीय सेना के 2 अफसरों और 5 सैनिकों की मौत हो गई। इस अभियान में 3 चरमपंथी मारे गए हैं। भारतीय सेना के अनुसार चरमपंथी सैन्य शिविर में अफसरों की मेस और अन्य इलाकों में दाखिल हुए थे और 12 सैनिक, 2 औरतों और 2 बच्चों के बंधक बनाए जाने की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन अभियान के दूसरे चरण में भारतीय सेना की जोरदार कार्रवाई के बाद इन सभी को बचा लिया गया। भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल मनीष मेहता के अनुसार आज भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेगा। क्यूबा की राजधानी हवाना में फिदेल कास्त्रो को श्रद्धांजलि देने के लिए रेवोल्यूशन स्क्वायर में हजारों लोग जमा हुए हैं। शुक्रवार को क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो का निधन हो गया था। इसी जगह पर वे दिवंगत राष्ट्रपति के लंबे भाषणों को सुना करते थे। फिदेल के भाई राष्ट्रपति राउल कास्त्रो की लोगों को संबोधित करने की उम्मीद है। क्यूबा के सहयोगी देशों समेत दुनिया भर से करीब 25 से ज्यादा नेता क्यूबा पहुंच रहे हैं। इक्वाडोर के राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने हवाना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में कहा,
क्यूबा नुंका ला फल्लादो अमेरिका लातिना, अमेरिका लातिना इक्वाडोर नो ले फल्लारा क्यूबा।
क्यूबा ने लैटिन अमेरिका का झंडा बुलंद रखा है। लैटिन अमेरिका, इक्वाडोर हमेशा क्यूबा का साथ देंगे। आप अकेले नहीं हैं। हमारे एकजुटता और सहानुभूति क्यूबा के लोगों के लिए, क्यूबा की क्रांति के लिए और महान और चिरकालिक नेता फिदेल कास्त्रो के लिए है। राफेल कोरिया के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में हजारों लोगों ने एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर कर बैंक ऑफ इंग्लैंड से मांग की है कि 5 पाउंड के नए नोट में जानवरों के उत्पादों का इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक के नोटों में टैलो मौजूद है जो जानवरों की चर्बी से तैयार किया जाता है। इससे शाकाहारियों में गुस्सा है। हिंदू नेताओं ने मंदिरों में इस नोट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया है और उनका कहना है कि इससे गाय की पवित्रता का अपमान होता है। जर्मनी में पुलिस ने घरेलू सुरक्षा एजेंसी के एक कर्मचारी को इस्लामिक चरमपंथी गतिविधियों में शामिल रहने की आशंका में गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने 71 वर्षीय इस व्यक्ति की इसी साल जर्मनी में इस्लामिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मदद करने के लिए भर्ती किया था, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये उन्हीं में शामिल हो गया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत, और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। ब्राजील के एक स्थानीय फुटबॉल क्लब के लगभग सभी खिलाड़ियों की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद फुटबॉल की दुनिया सदमे में है। कोलंबिया में कल हुई हवाई दुर्घटना में 71 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ये सारे खिलाड़ी शामिल थे। दक्षिण ब्राजील में क्लब के गृहनगर में इसके प्रशंसक स्टेडियम में इकट्ठे हुए, शोक प्रकट किया। फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा के अध्यक्ष और फुटबॉल के सबसे बड़े सितारे पेले ने कहा, फुटबॉल जगत शोक संतप्त है। बीबीसी संवाददाता का कहना है कि ये दुर्घटना ब्राजील के फुटबॉल को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी त्रासदी है। ब्राजील में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
ब्राजील की एक फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों की दर्दनाक मौत के बाद फुटबॉल की दुनिया में शोक छा गया है और पूरा फुटबॉल जगत उनके गम में शरीक हो गया है। 77 लोगों को ले जा रहा है एक चार्टर्ड विमान कोलंबिया के मेडलिन शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में सिर्फ 6 लोग जिंदा बच पाए और 71 लोगों की मौत हो गई। विमान ब्राजील से बोलीविया होते हुए कोलंबिया जा रहा था। इस चार्टर्ड विमान में ब्राजील की चापेकोन से रियल फुटबॉल टीम के सदस्य सवार थे। इस टीम को साउथ अमेरिका क्लब कप में कोलंबिया की एटलेटिको नेसियोनाल टीम का मुकाबला करना था, जो उनके लिए एक ऐतिहासिक मैच माना जा रहा था। दुर्घटना के बाद फाइनल मैच स्थगित कर दिया गया है। एटलेटिको नेसियोनाल टीम ने हार मान लेने की पेशकश की है ताकि चापेकोन से टीम को विजेता घोषित किया जा सके। चापेकोन से फुटबॉल क्लब के उपाध्यक्ष इवान टोजो ने बीबीसी को बताया कि शहर में किस कदर शोक फैला हुआ है। उन्होंने कहा, ये खबर मिलना बेहद दुखद था। चापेकोन से शहर में 2 लाख लोग रहते हैं। सभी लोग क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, सभी क्लब से प्यार करते हैं, सभी को इससे खुशी मिलती है। ये दिल दहला देने वाली खबर थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम विकसित हो रहे थे, हम बहुत जल्दी ऊंचाई तक पहुंच गए थे और अब इस दुर्घटना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि शव ब्राजील लौटे ताकि हम स्टेडियम में सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार कर सकें। इवान टोजो के शब्द। ब्राजील की पहली श्रेणी की फुटबॉल टीमों ने अपने खिलाड़ियों को मुफ्त में चापेकोन से टीम को देने की पेशकश की है। बार्सिलोना के सितारे लियोन मेसी और नेमार से लेकर मैनचेस्टर यूनाइटेड के वेन रूनी जैसे कई नामी फुटबॉल खिलाड़ियों ने भी क्लब के खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने बीते कुछ सालों में अप्रत्याशित सफलता की इबारत लिखी थी। हवाई अड्डे की ओर से जारी बयान के मुताबिक कंट्रोल टावर में इलेक्ट्रिक दिक्कत आने से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोलंबियाई विमानन अधिकारियों ने कहा है कि विमान में 21 पत्रकार सवार थे और विमान के दोनों रिकॉर्डरों को बरामद किया जा चुका है। कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सांतोस ने टेलीविजन में प्रसारित संदेश में हादसे के पीड़ितों को सांत्वना व्यक्त की। उन्होंने कहा,
मैं
एक बार फिर से कोलंबिया के सभी लोगों की तरफ से सभी पीड़ित परिवारों को प्रोत्साहन और मदद की भावना व्यक्त करना चाहता हूं। मारे गए अधिकारियों, पत्रकारों, विमान चालक दल सदस्यों और ब्राजील की फुटबॉल टीम के परिवारों और इस त्रासदी से प्रभावित उन सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदना है। इससे पूरा क्षेत्र शोकाकुल है। कोलंबिया के राष्ट्रपति सांतोस के शब्द। दुर्घटना पहाड़ी इलाके में हुई है और खराब मौसम के कारण दुर्घटना स्थल तक केवल सड़क से ही जाया जा सकता है।
ब्राजील के खिलाड़ियों की हवाई दुर्घटना में दर्दनाक मौत के बाद पूरा फुटबॉल जगत उनके गम में शरीक है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्स और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्स पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा को 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बना गतिरोध जारी है। विपक्ष संसद से सड़क तक केंद्र सरकार के फैसले को जन विरोधी बता रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी उपचुनावों के साथ साथ महाराष्ट्र व गुजरात के निकाय चुनावों में मिली जीत को नोटबंदी के पक्ष में जनता की राय बता रही है। दोनों क्या कुछ कह रहे हैं, रिपोर्ट सुनिए निखिल रंजन से।
सड़क पर आक्रोश और संसद में विरोध। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्षी दल सरकार के किसी तर्क से सहमत नहीं है। दिल्ली के बाद लखनऊ में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बिहार में होंगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के विरोध की वजह से संसद में भी कामकाज बाधित हो रहा है। हालांकि सरकार विपक्षी दलों के इस तर्क से सहमत नहीं है कि नोटबंदी का फैसला जनविरोधी है और जनता इसके खिलाफ है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर,
दो जगह स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए हैं। जो लोग कह रहे थे कि छोटे गाँव में बहुत दिक्कत है, वहां के ये नतीजे विरोध करने वालों को आईना दिखाने वाले हैं।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी उपचुनाव और निकाय चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की एक रैली में अमित शाह ने कहा,
ये आक्रोश दिन लगाते हैं, भारत बंद लगाते हैं, एक और देश में चुनाव चल रहे, मध्य प्रदेश में उपचुनाव था, असम में था, बंगाल में था, त्रिपुरा में था, महाराष्ट्र में कल चुनाव हुए, कल गुजरात में चुनाव हुए, सबकी सब जगह भारतीय जनता पार्टी की और प्रत्याशी की विजय हुई है। देश की जनता श्री नरेंद्र मोदी के साथ इन नोटबंदी के फैसले के साथ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में जीत के लिए ट्विटर के जरिए लोगों को धन्यवाद दिया है। उधर कांग्रेस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव नतीजों को लेकर व्याख्या सही नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कम हुआ है। कांग्रेस नेता मीम अफजल कहते हैं,
महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 3,075 सीट में से 851 सीटें जीती हैं और हमने 641 सीटें जीती हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी एक तरफ तालियां बजा रही है कि वो जीती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका वोट परसेंटेज कम हुआ है। पिछली बार वो 42% था जो घट करके सिर्फ 20% रह गया है। इससे साफ जाहिर होता है बीजेपी को मोनेटाइजेशन का नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है।
मीम अफजल का दावा है कि जनता नोटबंदी को लेकर कितनी परेशान है और गांवों के लोगों को कितनी दिक्कत हुई है, इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के उस ऐलान पर भी सवाल उठा रहे हैं जिसमें पार्टी ने अपने सांसदों और विधायकों से 8 नवंबर से दिसंबर के आखिर तक के बैंक लेनदेन का हिसाब देने को कहा है। विपक्ष इसे दिखावा बता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे पारदर्शिता का नाम दे रही है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर ने नोटबंदी की बहस को और तीखा बना दिया है।
तो जैसा कि निखिल रंजन से आपने सुना, बीजेपी उपचुनावों के साथ साथ महाराष्ट्र व गुजरात के निकाय चुनावों में मिली जीत को नोटबंदी के पक्ष में जनता की राय बता रही है। और नोटबंदी को लेकर जारी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सांसदों और विधायकों से कहा है कि वो जनवरी में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को अपने बैंक खातों के लेन देन की जानकारी दें। विपक्ष सवाल उठा रहा है। हमारे सहयोगी वात्सल राय ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह से बात की और पूछा कि वो प्रधानमंत्री की पहल और विपक्ष के विरोध को किस तरह से देखते हैं।
इससे अगर कोई लाभ नहीं है तो कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी अपनी पार्टी के मुखिया होने के चलते अगर ये अपनी पार्टी से शुरुआत कर रहे हैं तो आप समझिए इसका एक बड़ा पॉजिटिव असर होगा। अल्टीमेटली जनता की अदालत में ही फैसले होते हैं, जनता उसको ये तो मानेगी कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसा नहीं करेंगी तो आज के माहौल में जो परसेप्शन जाएगा वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाएगा। एक धर्म संकट है, वैसे तो सबको स्वेच्छा से अपनी संपत्ति की घोषणा करनी ही चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है वो सार्वजनिक जीवन में है। ये मैं एक बात कहता हूं कि अगर 50% भी इसका पालन होता है तो एक शुरुआत होती है, एक मापदंड होता है। आप बिल्कुल खड़े रहें और चलें ही नहीं, उससे बेहतर यह है कि आप 10 कदम ही चलें। आप चलें तो शुरुआत तो कहीं करनी पड़ेगी। जनता के बीच एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज के सर्व नेता जो है वो करप्ट होता है, इसमें चाहे मैं कहता हूं कि पूरी सच्चाई ना भी हो लेकिन एक परसेप्शन बन चुका है। और कई बार क्या होता है, रियलिटी से ज्यादा खतरनाक परसेप्शन होता है। आरटीआई के तहत पार्टियां जाना नहीं चाहती हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा वो लगता है कि आरटीआई में क्यों आए। तो मैं ऐसे कह रहा था कि जो संशय का एक माहौल बना हुआ है उसमें यह कदम बहुत सराहनीय है।
विपक्ष ने इस कदम को लेकर सवाल उठाए हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर खातों की जानकारी देनी है तो पिछले 3 महीने और 6 महीने के खाते का विवरण देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष बार बार एक आरोप लगाता रहा है कि कुछ सिलेक्टिव लोगों को लीक की गई थी ये जानकारी।
मैं ये कह रहा हूँ कि आपने तो कम से कम ये भी कभी नहीं किया। देखिए, आप पानी को अगर गर्म करेंगे तो आप जान लीजिए को 99 डिग्री पे ही भाप बनेगा, लेकिन आपकी जरूरत के मुताबिक अगर बहुत ठंडा पानी है तो हो सकता है कि 20-30 डिग्री से ही काम चल जाएगा आपका। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में देखें। देखिए, जनता हमेशा उसी को पूछती है जो उससे बेहतर होता है। वो आदर्शवादी खुद बन पाए न बन पाए लेकिन फॉलो उसी को करती है। और मैं बता दूं आपको, जितना ही विपक्ष इसका विरोध करेगा, मेरा ऐसा मानना है कि ये विपक्ष के लिए बहुत नुकसान की बात है।
तो आपको क्या लगता है कि पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, इन्हें फायदा है और विपक्ष नुकसान में रहेगा?
देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी का ग्राफ गिर रहा था, कहीं ना कहीं वो उनका ग्राफ गिरना रुक गया है, रुका ही नहीं है। अभी आप देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र के जो चुनाव आए हैं स्थानीय निकायों के, वो तो 17-18 दिन के बाद चुनाव हुए हैं ना नोटबंदी के, कहीं भी उसका असर नहीं दिख रहा है।
मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, क्या चुनाव से इस नोटबंदी के मुद्दे को जोड़ के देखना ठीक है?
हर पॉलिटिकल पार्टी, एक बात बताऊं आपको, कहीं से भी जब उसके पक्ष में कोई बात कहने की तर्क होता है तो उसको भुनाती है, उसमें कोई बीजेपी अलग नहीं है। कल को अगर कांग्रेस यही मेजोरिटी में होती तो कांग्रेस भी यही बात कहती। किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने लोकल बॉडीज के चुनाव में जीत को चुनाव से नहीं जोड़ा हो तब तो ये आरोप लगाना सही होता है, लेकिन ये प्रक्रिया है। सारे लोग कहते हैं कि देखो जनता हमारे साथ है। मैं कहता हूँ ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। अब आप ऑब्जेक्टिविटी को कैसे मना कर देंगे, कोई उसका नाम न ले, इसका सीधा चुनाव से असर हो जाएगा या आम चुनाव में भी असर रहेगा, वो जरा दूर की कौड़ी है।
भारतीय जनता पार्टी की उपचुनावों के साथ साथ महाराष्ट्र व गुजरात के निकाय चुनावों में मिली जीत का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद नसबंदी कराने वालों की तादाद में भी बढ़ोतरी हुई है। नोटबंदी का नसबंदी कनेक्शन जनसंख्या नियंत्रण का नहीं बल्कि लोगों की मजबूरी की वजह से जुड़ा है। नकदी की समस्या से जूझते लोग नसबंदी कराने के एवज में मिलने वाले रुपयों के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हृदेश गुप्ता की रिपोर्ट सुनिए, जिसे पेश कर रहे हैं अजय शर्मा।
अलीगढ़ के नेहरौला गांव के रहने वाले पूरन तीन बच्चों के पिता हैं। 8 नवंबर के पहले उन्हें कभी सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहभागी बनने की चाहत नहीं हुई, लेकिन अब वो नसबंदी करा चुके हैं। इस बदलाव की वजह क्या है, पूरन बताते हैं।
बेलदारी का काम करता था, गरीबी हूँ बहुत। नोटबंदी भैया जब से कागज में नहीं काम मिल रहा मुझको कैसा भी। फिर मैंने सुनी के हॉस्पिटल में जाके नहीं आ बोले के कागज में के वहाँ सरकारी मिल रहा है पैसे।
पूरन मजदूरी करके अपने घर की जरूरतों को पूरा करते हैं। 500 और 1000 के पुराने नोट रद्द होने के बाद उन्हें काम मिलने में दिक्कत होने लगी। ऐसे में नसबंदी कराने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन के रूप में मिलने वाले 2000 रुपए उन्हें बड़ी पूंजी मालूम हुआ। पूरन के पड़ोसी राजकरण तिवारी बताते हैं।
रीजन यही है कि गरीबी हालत तो है ही है, इसके खर्चा चलाने के लिए पैसे वैसे नहीं थे, उसके कारण नोटबंदी या कैसी लोग कह रहे हैं आचार्य आ रहे थे इसके सामने, इसको बताया कि 2000 रुपए मिलते हैं उसके नाते तू अपना ऑपरेशन करा ले।
दरअसल नकदी संकट के समाधान के लिए पूरन अपनी पत्नी की नसबंदी कराना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी के शारीरिक तौर पर कमजोर होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें नसबंदी कराने की सलाह दी। हालांकि रुपयों के लिए नसबंदी कराने वाले पूरन को मलाल है कि उन्हें ऑपरेशन के बाद मिले तो बड़े नोट।
मैं यहाँ से घरवाली को लेगा, मेरी गूंगी है, विकलांग है, विकलांग के आधार पर गुन्ने डॉक्टर साहब ने मने कर दी, तो फिर वो लेके आप करा लो 2000 रुपए मिल जाएंगे, मुँह पे भी बंदे नोट मिले करानी पड़ी मैं अपनी नसबंदी।
पूरन का कहना है कि 2000 रुपए मिलने के बाद कुछ दिनों के लिए उनकी दिक्कत कम हुई है। उत्तर प्रदेश में नोटबंदी के बाद नसबंदी कराने का ये इकलौता मामला नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 नवंबर के बाद से लगभग हर जिले में नसबंदी कराने वालों की संख्या बढ़ी है।
नोटबंदी के चलते दिहाड़ी मजदूर को काम नहीं मिला तो पैसे के लिए नसबंदी कराने का मामला। और अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में नगरोटा में चरमपंथियों ने कल सुबह सेना के एक शिविर पर हमला किया था और इस हमले के बाद चले ऑपरेशन में भारतीय सेना के 2 अधिकारी 5 सैनिकों की मौत हो गई। इस ऑपरेशन में 3 चरमपंथी भी मारे गए। हमारे सहयोगी वात्सल राय ने श्रीनगर में मौजूद BBC संवाददाता रियाज मसरूर से बात की और ताज़ा स्थिति के बारे में पूछा।
ताज़ा स्थिति यह है कि कल देर रात तक वो कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहा और आज भी जो घटना स्थल है उसके आसपास किसी भी यातायात की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो डेटॉल है वो आर्मी ने सीधे सीधे एडमिट कर लिया है कि 2 ऑफिसर्स और 5 सैनिक इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और इसमें 3 चरमपंथी जो कि हमलावर हैं अंदर घुसे थे, तो कुल मिला के 10 डेथ्स हुई हैं इस पूरे ऑपरेशन में। और इस ऑपरेशन में सेना ही नहीं बल्कि सेना के स्पेशल फोर्सेस जिनको पैरा कमांडोज कहते हैं उनका भी प्रयोग किया गया था।
भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी में चरमपंथी हमले के बाद भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था, क्या उसके बाद ये पहला मौका है जब सेना ने माना है कि उसके 7 जवान मारे गए हैं?
जी देखिए, पहला मौका नहीं है क्योंकि 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और 4 अक्टूबर को बारामूला में ही उड़ी के करीब कोई 20 किलोमीटर के रेडियस में एक आर्मी कैंप है उस पे भी एक चरमपंथी हमला हुआ था और चरमपंथी जो है हमला करके भाग गए थे और उसमें BSF का एक जवान मारा गया था। और उसके बाद आपको मालूम है कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस तरह का तनाव बना रहा वो सबके सामने है। आर्मी का कहना है कि कुल मिलाकर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक जो है 105 बार पाकिस्तान वो संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है, जिसमें कोई 33 लोग मारे गए हैं जिसमें 19 सैनिक हैं। तो इसका मतलब है सर्जिकल स्ट्राइक को एक डेटरेंस के तौर पे जो उसका प्रयोग किया गया तो पाकिस्तान को उसने डेटर नहीं कर पाया। अब की बार जो है ये इस हमले में नगरोटा के हमले में जो सीधे सीधे स्पष्ट किया गया है कि 7 सैनिक मारे गए जिसमें 2 ऑफिसर्स में हैं, तो लगता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक 2 की तैयारी हो रही है और जिसमें आर्मी और राजनीतिक लीडरशिप है उसमें एक तरह से एक सहमति है। पाकिस्तान जो है इस तरह के घटनाओं का समर्थन कर रहा है तो इसके बाद क्या किया जाए। तो ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है जिसमें जम्मू कश्मीर में एक तो आम जनता में भी शंका पाई जाती है और लीडरशिप में भी राजनीतिक वर्गों में भी ये शंका पाई जाती है, चिंता व्यक्त की जा रही है कि किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट बरपा न हो जाए जिसको जंग भी कहा जाता है।
बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर जानकारी दे रहे थे। और यहीं पर अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। अमर क्या कह रहे हैं अखबार, सारी बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के इस हमले से?
जम्मू कश्मीर की इस खबर को सभी अखबारों ने, हिंदी के और अंग्रेजी के अखबारों ने, इसे पहले पन्ने पर अपनी पहली या दूसरी खबर बनाया है। दैनिक भास्कर अखबार ने भी, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने भी इसे दूसरी बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक खबर छपी है कि सरकार के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि वहाँ पर हमले की ऐसी जानकारी, खुफिया जानकारी पहले से दी जा चुकी थी, 10 दिनों पहले ऐसी जानकारी दी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा इंतजामों में चूक हुई।
जब भी कोई हमला होता है इस तरह की खबर जरूर आती है जिसमें कहा जाता है कि चेतावनी पहले दी गई थी। इसके अलावा
जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सभी बीजेपी के जो सांसद हैं वो अपने बैंक खाते दें, इस खबर को भी
अमित शाह को दें,
इसकी खबर को तवज्जो है। नोटबंदी के बाद पैदा हुए हालात को टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी पहली खबर बनाया है कि एटीएम मशीनों के बाहर कतारें अभी भी लगी हुई हैं और नकदी की कमी की वजह से लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई हैं, उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। वहीं अखबार की दूसरी खबर के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी नोटबंदी का समर्थन किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर पर नज़र दौड़ाएं तो विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की प्रदूषित हवा में सांस लेने से बच्चों में दिल और दिमाग से संबंधित बीमारियां कम उम्र में ही हो सकती हैं, और जैसे सर्दी बढ़ गई है और आज बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा है, अभी जो साथी सवेरे आए हैं वो बता रहे हैं, और सर्दी के मौसम में धुंध के बढ़ने के साथ हवा में प्रदूषित कणों की समस्या और गहराएगी। साथ ही एक और खबर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि द हिंदू अखबार में खबर छपी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि वयस्क लड़के को माता पिता के खुद के बनाए घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जज ने माता पिता की इच्छा के मुताबिक बेटे और बहू को घर छोड़ने का आदेश दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया अमर शर्मा। और अब हम 100 विमेन स्पेशल की बात करेंगे। इस श्रृंखला के तहत हम ऐसी महिलाओं से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो कि ऐसे काम या नौकरियां करती हैं जो कि मर्दों के माफिक जिन्हें समझा जाता है, जैसे स्कूटर, कार, बस हो या ट्रक, इनके कलबुर्जे ठीक कराने का काम हो। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सेंटर माने जाने वाले संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक महिला हैं जो अपने पति के साथ पिछले करीब 20 साल से ट्रक के टायर बदलने का काम कर रही हैं। शांति देवी से मुलाकात की बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने।
मैं अपनी कार का टायर बदल लेती हूँ, लेकिन आप तो ट्रक का बदलते हो, बस का बदलते हो, क्या क्या करते हो, अपने कारनामों के बारे में बताओ हमको।
जैसे पुराना टायर आया, ठीक है, उसकी पहले हवा निकाल, हवा निकल गई, फिर उसको खोल के अगर नवा डालना है तो पुराना चेंज कर दो, नया डालो, ठीक है, फिर उसमें फिट करके हवा छोड़ दो, तैयार हो गया। और जैसे अगर नया टायर आता है तो उसमें पहले ट्यूब और लंगोटी निकाली जाती है, लंगोटी निकाल के फिर उसको साफ करते, कचरा नहीं रह जाए, फिर उसे पाउडर लगा देते हैं, पाउडर लगा के ट्यूब लंगोटी अंदर डाल देते हैं, फिर जो लोहे का रिम होता है ना इसी में टायर फंसा देते हैं, पुराना हटा के नया डाल देते, फिर हवा डाल देते, बस तैयार हो गया।
कितने किलो का होगा
ये? होता है करीब करीब 1 क्विंटल का तो होता है।
1 क्विंटल? 1 क्विंटल यानी कितने किलो हुआ?
100 किलो।
हाँ
100 किलो।
तो आप अपने बारे में ये बताओ कि फिर क्यों आपने इसको चुना?
जब अपन को कोई काम करना है, जैसे आप लोग को आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया था, तो जब आपको मुश्किल लगा था, थोड़ा मुश्किल लगता है जब बच्ची होती है, और जब अपन जान लेते हैं कि हमको BA करना है या MA करना है, तो करना है तो करना है, क्या उसमें रात भी जगना पड़े दिन भी जगना पड़े, तो करना है ना।
तो आप जितना पैसा चाय की दुकान से कमा रहे थे और अब आप जब ये कर रहे हो, तो आप जिस तरह जो माली हालत थी वो आपकी बदली है, बच्चों की शादी हो पाई है, पढ़ा लिखा पाया, क्या हुआ है वो, क्या बदलाव आया है ये काम करने से?
ये काम करने से देखो 5 लड़कियों की शादी करी, 2 बहुएँ भी घर में आ चुकी, ठीक है। 50 गज जमीन ली, जमीन कितनी महंगी, मकान भी बना, अब जो भी कुछ कर रहे हैं सब उन्हीं के लिए।
तो दिल्ली आने से पहले आप कहाँ थे, वहाँ क्या करते थे?
इधर ही थे ना, एमपी में, ग्वालियर में थे ना, कपड़े की सिलाई करते थे दिन में, जैसे मोहल्ला बस्ती में देते हैं ना, लोग हमारे कपड़े सिलते हैं, ऐसे कपड़े सिलते थे। उसके बाद में नाइट में जो बीड़ी नहीं पीती होंगी भाई लोग, नाइट में वो बनाते।
अच्छा, और फिर दिल्ली क्यों आए?
दिल्ली तो ऐसे आए ना, पहले वाले हस्बैंड ख़त्म हुए, दूसरे।
अच्छा, तो ये यहाँ रहते थे या ये शादी करके यहाँ ले आए?
इनके भी बच्चे थे, हमारे भी बच्चे थे।
अरे वाह, अच्छा। तो कैसे मुलाकात
हुई? मुलाकात ऐसी हो जाती है, एक दूसरे का चान होता है तो मिलाप हो ही जाता है। अब तुम यहाँ बैठी हो, क्या पता तुम्हारा चाहने वाला कहाँ होगा, और क्या पता मिल गया, क्या मिल गया, मिला है
यहाँ पे। लेकिन आपके जैसा काम तो कोई और औरत कर रही है, तो इतने आदमियों के बीच में काम करने में कुछ हिचकिचाहट होती है?
ना, मन साफ होता है ना, तो कुछ ही नहीं होता। जब अपन गलत होते हैं तो दूसरा आदमी खाने के लिए, जैसे शीला दीक्षित, वो भी तो औरत थी, उनने भी तो शासन चलाया। वो हम शासन नहीं चलाया, जो मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत का फल कभी तो मिलेगा, मिल चुका है, आगे और भी मिलेगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा बुरा कैसे होगा।
टायर बदलने और रिपेयर करने का काम करने वाली शांति देवी से मुलाकात कर रही थी हमारी संवाददाता दिव्या आर्य। और अब कार्यक्रम में खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का सिलसिला जारी है, और कल भारत ने इंग्लैंड को मोहाली में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के चौथे ही दिन 8 विकेट से करारी मात दी। पहली पारी के आधार पर 134 रन से पिछड़ने वाली इंग्लैंड की दूसरी पारी कल 236 रन पर सिमटी, और भारत को जीत के लिए 103 रनों का आसान लक्ष्य मिला, जो उसने सलामी बल्लेबाज पार्थिव पटेल के नाबाद 67 और चेतेश्वर पुजारा के 25 रनों की मदद से 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वैसे कल भारतीय गेंदबाजों को थोड़ी मेहनत जो रूट और हासिब हमीद के सामने करनी पड़ी। हमीद ने नाबाद 59 रन बनाए, जबकि जो रूट 78 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद पर अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच हुए। इनके अलावा क्रिस वोक्स ने 30 रन बनाए। भारत के आर अश्विन ने 81 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा और जयंत यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही भारत ने 5 टेस्ट मैचों की मौजूदा सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। दोनों टीमें 8 दिसंबर से मुंबई में चौथा टेस्ट मैच खेलेगी। उधर न्यूजीलैंड ने कल पाकिस्तान को हैमिल्टन में समाप्त हुए दूसरे टेस्ट मैच में 138 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 369 रनों का लक्ष्य था, और एक समय तो उसकी सलामी जोड़ी समी असलम और कप्तान अजहर अली ने पहले विकेट के लिए 131 रनों की साझेदारी भी कर ली थी, लेकिन इनके आउट होते ही पाकिस्तान की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। समी असलम ने 91 और अजहर अली ने 58 रन बनाए। न्यूजीलैंड के नेल विग्नर ने 57 रन देकर 3, टीम सऊदी ने 60 रन देकर 2 और मिचेल सेंटनर ने 49 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 2-0 से टेस्ट सीरीज अपने नाम की। वहीं कल से शुरू हुए मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में भारत के समीर वर्मा और बी साई प्रणीत ने जीत के साथ शुरुआत की, जबकि पी कश्यप को वॉकओवर मिला। लेकिन सातवीं वरीयता हासिल एचएस प्रणय चीन ताइपे के चुनवई चेन के खिलाफ तब मुकाबले से हट गए जब चेन पहले गेम में 6-2 से आगे थे। आज महिला एकल वर्ग में भारत की साइना नेहवाल शीर्ष वरीयता के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। उनका सामना इंडोनेशिया की हन्ना रामांदिनी से होगा।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। ब्राजील की एक फुटबॉल क्लब चापेकोएंसे रियल फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों की दर्दनाक मौत के बाद पूरी दुनिया के फुटबॉल जगत में शोक छा गया है। जम्मू के नगरोटा में कल चरमपंथियों ने सेना के एक शिविर पर हमला किया, और उसके बाद चले ऑपरेशन में भारतीय सेना के 2 अफसरों और 5 सैनिकों की मौत हो गई। क्यूबा की राजधानी हवाना में फिदेल कास्त्रो को श्रद्धांजलि देने के लिए रेवोल्यूशन स्क्वायर में हजारों लोग जमा हुए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। थोड़ी देर बाद यानी कि घंटे भर बाद विश्व भारती कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को राजेश चौहान के साथ विदा दें। नमस्कार।